कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार है और इसके हम 16वें नंबर की गाथा पढ़ चुके हैं और इस पे अमृत चंद्राचार्य जी ने जो कलश लिखा है वो 17वें नंबर का 17th श्लोकार्थ भी हमने देखा था और उसके ऊपर स्वामी जी की जो टीका है वो हम श्लोक के ऊपर की टीका देख रहे हैं, कलश के ऊपर की। हम पृष्ठ क्रमांक 15 पर आए हैं और यहाँ हमने कल देखा था कि पाप को तो पाप सारी दुनिया कहती है लेकिन पुण्य को भी पाप कोई विरला ही कहता है और वो विरला जो होता है वो बुद्धजन होता है, यानि सम्यक दृष्टि जीव जो है वही पुण्य और पाप को एक ही है। ये बात अगर हम आगे जाके देखने वाले हैं, ये पुण्य पाप नाम का जो अधिकार कुंदकुंद आचार्य ने लिखा है इसमें वो बात बहुत उन्होंने स्पष्टता से वर्णित की है। कहते हैं कि जो पुण्य जिसको हम सुशील कहते हैं और जो पाप है जिसे हम कुशील कहते हैं, तो इस पुण्य को सुशील कहने में कौन सा मतलब उसमें मतलब है, क्योंकि जो सुशील है वह संसार में ही अगर हमें भ्रमण कराता हो तो उसे हम सुशील कैसा कह सकेंगे, ये बात भी उन्होंने बताई थी। उस बात को आगे बढ़ाते हुए ये हम पढ़ते हैं अभी नीचे से 6ठी लाइनें देखिए। समय सार पुण्य पाप अधिकार माँ जैसे नाचारिणी टीका गाथा 163 माँ आवे छे। अभी देखो ऐसी बात है, हमें तो विदित है कि प्रवचन सार के टीकाकार दो थे जो हम रोज पढ़ते हैं, प्रवचन सार में जयसेन आचार्य और अमृत चंद्राचार्य। यहाँ समय सार में भी जयसेन आचार्य ने भी टीका की है और अमृत चंद्राचार्य ने भी की है। तब यहाँ पर जयसेन आचार्य क्या कहते हैं वो बात बता रहे हैं। फिर नीचे गाथा 154 सुधी पुण्य अधिकार पूरो करी, यानी पुण्य पाप अधिकार है उसमें पहले पुण्य की बात ली है। गाथा 155 थी पाप अधिकार शुरू थाई चे त्या सूचे त्या शिष्यनो प्रश्न छे के जीवादीनु श्रद्धान। जीवादीनी श्रद्धान यानी क्या, सात तत्वों का श्रद्धान। सात तत्व जानते हैं आप, जीव अजीव वगैरह वगैरह, तो वो जो सात तत्व है उसका श्रद्धान इत्यादि व्यवहार रत्नत्रयनु व्याख्यान पाप अधिकार मा केम लिधू। ख्याल में आया, यानी हमने देखा था के जिसे निश्चय सम्यक दर्शन होता है उसे सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति होती है, देवगुरु शास्त्र की यथार्थ श्रद्धा होती है, स्वपर भेद विज्ञान कहो या स्वपर की मान्यता कहो यथार्थ होती है और उसे आत्मानुभूति होती है। तो आत्मानुभूति जो है वह निश्चय रत्नत्रय है और सात तत्वों की जो श्रद्धा है या देवगुरु शास्त्र की जो कोई प्रतीति है कहो, इनको पाप अधिकार में क्यों लिया, ऐसा प्रश्न है। इत्यादि लिखा ना, क्या लिखा देखो देखो देखो, शिष्य नो प्रश्न छे के जीवादीनु श्रद्धान इत्यादि, ये जीवादि भी उधर भी दी लगाया आदि लगाया और श्रद्धान इत्यादि यानी जीव अजीव आदि जो सात तत्व उनका श्रद्धान इत्यादि में बाकी देवगुरु शास्त्र को भी लेना। व्यवहार रत्न त्रेनु व्याख्यान पाप अधिकार मां केम लिधू, देखो प्रश्न कैसा जेन्युइन है कि दो मिनट हमें भी सोचने में मजबूर करता है यह प्रश्न ख्याल में। तो क्या कहते देखो, तेना उत्तर मां खुलासो करे छे जो के व्यवहार मोक्ष मार्ग देव शास्त्र गुरुनी श्रद्धा आदि तथा, अभी ये उससे भी बढ़िया बात है, क्या कहते हैं पंच महाव्रतना परिणाम इमने उपादेय भूत निश्चय रत्नत्रयनु व्यवहार थी कारण केवामा आयबू, यानी निश्चय रत्नत्रय कैसा है, उपादेय है और उनको व्यवहार से कारण केवामा आयु कौन है, देवगुरु शास्त्रनी श्रद्धा ने पंच महाव्रत ने तथा तेने परंपराए जीवनी पवित्रता नु कारण हुआ थी, यानी ये शुभ परिणाम जो है वह क्या है, परंपराए जीवना पवित्रता नु कारण हुआ थी, व्यवहारे पवित्र कहेवामां आवेल छे, तो इनको व्यवहार से पवित्र कहा है, इसका अर्थ क्या है निश्चय से। हाँ जी, अरे वाह बहुत बढ़िया। हाँ ये समझाते हैं कि व्यवहार पवित्र है तो निश्चय से अपवित्र है यानी मलिन है मेचक है, ख्याल में तो क्या समझा रहे हैं, ये हमने क्यों पाप अधिकार में लिया उसका खुलासा चल रहा है। तो कहते हैं वो परंपरा जीवनी पवित्रता अनुकारण, क्यों परंपरा जीवनी पवित्रता अनुकारण कहा है कि जब जब जीव अपने स्वरूप में एकाग्र होता है तल्लीन होता है तब पहले तो वो शुभ परिणामों में आएगा। तो मुनियों के तो ये पंच महाव्रत आदि के तो परिणाम चलते हैं, उससे भी अपने स्वस्वरूप के बारे में थोड़ा बहुत कुछ विकल्पात्मक जो कोई भूमिका होगी उसमें जो चिंतन होगा उसमें भी शुभ परिणाम है और वो छोड़कर वो शुद्ध में जाते हैं और शुद्ध में गए हुए वापस वहां से निकलते हैं बाहर तो फिर शुभ में आते हैं। तो इसलिए उसको उपचार से क्या कहा है, पवित्रतानु कारण छे, परंपराए जीवनी पवित्रतानु कारण होवा थी व्यवहारे पवित्र केवामा आवेल छे। तो पण अभी ये सब है फिर भी एक स्वरूप भगवान आत्मा ना अवलंबन ने छोड़ी ने रागनु अवलंबन ले छे माठे पुण्य ए पन परमार्थे पापज छे। अभी ये बात किसको डाइजेस्ट होवे, ख्याल में आया, ऐसी कड़क बात है कि सुनने वाले के तकलीफ हो जाए। क्या कह रहे हैं कि जो पुण्य है वो परमार्थ दृष्टि से देखा जाए, परमार्थ यानी क्या कि निश्चय से देखा जाए वास्तविकता देखा जाए मोक्ष मार्ग में, उसे क्या कहा है कि पुण्य परमार्थे पापज छे। अभी तेनु कारण शू छे, केम पाप के ओचो साहेब, तो कहजे के शुभ परिणाम नु परद्रव्य ना आलंबन रूप पराधीन पणु छे। क्या हो गया। ये शुभ परिणाम जीव के कब उत्पन्न होते हैं, तो कहते परद्रव्यना आलंबन रूप, यानी जब जब यह जीव परद्रव्य का अवलंबन लेता है तब तब क्या होता है, उसको पराधीनपना होता है। यानी वो पर में जाएगा, पर का चिंतन करेगा, पर का मनन करेगा, तभी उसे शुभ भाव होते हैं, और इसलिए उसको पराधीन परिणाम कहा है। क्या कहा, ऐसा समझा रहे हैं, पराधीनपना इसलिए कि वो पर के तरफ ध्यान देता है, इसलिए वो पराधीनपना है। कौन सी बात है, शुभ परिणाम नु परद्रव्यना आलंबन रूप पराधीनपणु छे, एक कारण। बीजू कारण, निर्विकल्प समाधि मां लीन योगियों ने आत्मस्वरूप माथी पड़वा मां व्यवहार विकल्पों नो आलंबन एटले गुणगुणीना भेदरूप आत्मस्वरूप नो चिंतवन अथवा द्रव्य गुण पर्याय नो भेदरूप चिंतवन कारण छे। यानी उनको क्या कहना है, जो आत्मानुभव है यह अशुद्धोपयोग है, वह तो निर्विकल्प रूप अवस्था है, और वो निर्विकल्प जो समाधि कहो या आत्मानुभव कहो, उस टाइम में आत्मस्वरूप में से गिरने के लिए क्या होता है कि विकल्प का अवलंबन लेते हैं। तो वह विकल्प का अवलंबन ही कारण है, किस बात का, शुभ परिणाम आने का। शुभ परिणाम क्यों आते है? दो बात बताई ना, पहला तो कारण बताया कि परद्रव्य का अवलंबन लेना पड़ता है, और वहां कह रहे हैं कि वे विकल्प का अवलंबन लेते, और इसलिए कह रहे हैं आ रीते व्यवहार रत्नत्रय नो विकल्प आयो एटले निश्चय रत्नत्रय थी पड़ी गयो। तो अब यहां व्यवहार रत्न ने राग है, ये बात नक्की हो गई कि नहीं, क्या अभी भी शंका है। यहां समझा रहे हैं के व्यवहार रत्नत्रय नो विकल्प आयो एटले निश्चय रत्नत्रय थी पड़ी गयो। आ रीते निश्चय नयनी अपेक्षा ए पुण्य ए पाप छे, एटले व्यवहार थी जेने पुण्य कहवाय छे ते निश्चय थी एटले खरेखर पाप छे। इसलिए कुंद कुंद आचार्य भगवान ने पुण्य पाप के अधिकार में पाप का अधिकार चालू होते ही व्यवहार रत्नत्रय के राग को पाप अधिकार में लिया। तो वो तो पुण्य के बहुत द्वेष्टा होंगे, पुण्य परिणाम होंगे, ऐसा अपने को लगता है ना। अरे वो तो वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, ख्याल में आए ना। आई कहे छे के आत्मा एक छे, तो पन व्यवहार दृष्टि थी देखवामा आवे तो त्रण स्वभावपना ने लीधे अनेकाकार रूप छे, मेचक छे आवो वितराग मार्ग लोकों ने सांभळवा पण मळतो नथी। अरे रे वो कर रहे है, देखो देखो क्या कहते हैं, आवो वितराग मार्ग लोकों ने सांभळवा पण मळतो नथी। अरे रे अनादिती जीव सम्यक प्रतीति विना अनुभव विना चार गति मां रखड़े छे, सम्यक श्रद्धा विना सम्यक प्रतीति। तो कोनी सम्यक प्रतीति करवी छे, हाँ विरेश भाई, पोताना स्वभाव नहीं, बरोबर पोताना आत्मा नहीं। तो आप संडे को नहीं आए थे ना, ये संडे को, हाँ मैं अभी याद आ गया मेरे को, वहां लिखा था जे स्वरूप समझा विना। तो ये बताए क्या बताए, कह रहे अनादि थी जीव सम्यक प्रतीति विना, एनी अंदर श्रद्धा नाम नो गुण तो छे, लेकिन वो गुण होता हुआ भी वो श्रद्धा किसमें है कि जो मेरा नहीं है उस रूप में वही मैं, ऐसी मिथ्या श्रद्धा है। जैसा मैं हूं वैसी सम्यक श्रद्धा इस जीव की नहीं है, इसलिए कहते हैं अनुभव विना क्या कहे छे, पाम्यो दुख अनंत चार गति मां रखड़े छे। शब्द अलग है, भाव तो एक ही है साहब, ख्याल में। मैंने एक बार फिर बोलता हूं, ऐसा भी बताया था अनंत अज्ञानी के एक ही कोई बारे में विचार हो तो वो अनंत होंगे, और अनंत सम्यक दृष्टि कहो या सम्यक ज्ञानी कहो, जीवों के एक विषय में एक ही मत होगा सबका। तो भले वो श्रीमद् जी बोले या स्वामी जी बोले या महावीर भगवान बोले या आदिनाथ बोले, वस्तु स्वरूप में तो उनका कोई फर्क नहीं होगा। क्या है? देखो चार गति, अनुभव विना चार गति मां रखड़े छे। भगवान अमृतचंद्राचार्यनो आ मूल श्लोक छे, तेवो मुनि हता, पंच परमेष्ठी छे ने, ते पंच परमेष्ठी मां आचार्य भगवान थई गया। अभी उस कलश सत्रे पर का भावार्थ, जयचंद जी जयचंद पंडिते पन भावार्थ केवो लीधो छे जुओ, सरस लीधो छे। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय आत्मा एक छे। अभी ये द्रव्यार्थिक नय में भी अनेक भेद है, उसमें से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय यानी इससे शुद्ध और कोई द्रव्य का कथन होगा ही नहीं, दिस इज अल्टीमेटम, इसलिए उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, एक देश द्रव्य शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, ऐसा उसके भेद है। तो उसमें से जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है उसमें आत्मा एक छे। शुद्ध द्रव्य जेनु अर्थ एटले प्रयोजन छे, ए शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। शुद्ध एटले त्रिकाल पवित्र, अने द्रव्य एटले त्रिकाळी अखंड वस्तु, अने आर्थिक एटले प्रयोजन जेनु छे ते शुद्ध द्रव्यार्थिक नय थी, नहीं सॉरी प्रयोजन जेनु छे ते शुद्ध द्रव्यार्थिक नय थी आत्मा एक छे। जे सम्यक दर्शन नो विषय छे तेने शुद्ध द्रव्यार्थिक नय बतावे छे, यानी सम्यक दर्शन का जो विषय भूत जो आत्मा है उसका कथन करने वाला जो कोई नय है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। हमने अभी तक पढ़ा था शुद्ध नय, तो शुद्ध नय वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो कहते हवे कहे छे के आ नय ने प्रधान करी आत्मा ने अभेद एक रूप कहेवामां आवे त्यारे पर्यायार्थिक नय गौण थयो, यानी पर्याय से वो कोई उसमें भेद है कि नहीं, तो हाँ है, लेकिन उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये द्रव्य का विषय तो त्रिकाली आत्मा ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी वितरागी परिणति ए पर्याय हुआ थी गौण थई। क्या कहा? के जिस पर्याय ने त्रिकाली आत्मा का स्वीकार किया है, जाना है और उसी में एकाग्र हो, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, वो सम्यक पर्याय वितरागी पर्याय भी त्रिकाली स्वभाव में नहीं है क्योंकि वो तो एक समय की है और मैं त्रिकाल हूं, ऐसी बात है। व्यवहार रत्न त्रय नहीं तो आई बात ज नहीं। क्यों? व्यवहार रत्न त्रय केम बात नहीं? ये तो विकारी पर्याय छे, विभाव पर्याय छे, रागनी पर्याय छे, एनी तो बात ज नहीं। आ तो निर्मल पर्याय जे छे वितरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी ई पण शुद्ध नयना शुद्ध द्रव्यार्थिक नयना विषय में आवती नथी। ए तो बंधनु कारण छे। कोण? व्यवहार रत्नत्रयनी तो अहीं वात ज नथी। केम? ए तो बंधनु कारण छे, पण अहीं तो भगवान आत्मा जे त्रिकाल शुद्ध एक स्वरूपी छे तेनी ज्ञान चारित्रनी निर्मल पर्याय जे साचो मोक्ष मार्ग ते पण पर्यायार्थिक नो विषय होवाथी गौण थाय छे, अभाव नहीं, यानी वो है ही नहीं, खत्म हो जाती ऐसी बात नहीं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं, इसलिए उसको गौण किया है। आहा हा, शरीर मनवाणी तो एक बाजू रहा, केम के ये तो जड़ धूल छे। धूल छे का अर्थ क्या हो गया? पुद्गल है, पुद्गल, पुद्गल यानी माटी है, धूल है। कौन? किसको? ये शरीर, ये मेरा शरीर, शरीर मन वाणी तीनों को लिया। पुण्य पाप ना भाव पन एक बाजू रहा, કેમ કે એ મરીન છે, સંસાર છે, પણ અહીં તો જે ત્રિકાળી ભગવાન એકરૂપ પ્રભુ, તેના પ્રતીતિ જ્ઞાન અને ચારિત્ર સાચા હો શુદ્ધ રત્નત્રય, તેમને પણ જે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયનો વિષય એકરૂપ ત્રિકાળ સ્વભાવ છે, તેની અપેક્ષાએ પર્યાય હોવાથી, પર્યાય રથિક નયનો એટલે વ્યવહાર નયનો વિષય હોવાથી મેચક મલિન કયા છે. યે બાત સમજ મે આ રહી હૈ ક્યા? ક્યા બહોત ફાસ્ટ હો રહે? ખ્યાલ મે આ ગઈ ના? હા, નહીં આવે તો પૂછના હો, રુકેંગે. યહાં તો દેખો, જબ હમ કહે રહે હૈ, દેખો દ્રવ્ય કો દેખને કી દો દ્રષ્ટિ હૈ, જો દ્રવ્ય કો દ્રવ્ય સ્વભાવ સે દેખે વો દ્રષ્ટિ, ઉસકો દ્રવ્યાર્થિક નય કહેંગે. અભી યહાં શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક ને, ઉસમેં અભી યહાં કોઈ અશુદ્ધતા કી બાત હી નહીં હૈ, ઓર દૂસરી હૈ વો પર્યાયાર્થિક નય કી બાત. યાને દ્રવ્ય કો હી પર્યાય કી અપેક્ષા સે દેખેંગે યા કહેંગે તો ઉસે પર્યાયાર્થિક નય કહેંગે. અબ જબ હમ દો ને હૈ, હમારે ઘર મે ભી દો બેટે હૈ, કૈસે જુડવા બેટે હૈ, બિલકુલ એક જૈસે, પણ હમ એક કી શાદી કરેંગે તો ઉસકો વર કહેંગે ઓર દૂસરા અનવર હોગા. ક્યા હોતા હૈ આપ લોગો મે જો ભી હોતા હૈ, ઓર ગીત ગાયેંગે વો વર કે દૂસરે કે નહીં. વૈસે યહાં દોનો હૈ ક્યા, કે દ્રવ્યાર્થિક નય સે દ્રવ્ય કો દેખના ઓર પર્યાર્થિક નય સે દ્રવ્ય કો દેખના. પર્યાર્થિક નય સે પર્યાય કો દેખના નહીં, ઉસ પર્યાય કી દ્રષ્ટિ સે દ્રવ્ય કો દેખના ઓર દ્રવ્ય કી દ્રષ્ટિ સે દ્રવ્ય કો દેખના. તબ જબ હમ દ્રવ્ય કી બાત કર રહે તો ઇસકો ગૌણ કર રહે, વો હૈ નહીં એસા નહીં બતા રહે. હૈ નહીં બતાને વાલા તો વેદાંતિ હો ગયા. ઓર જો દ્રવ્યાર્થિક નહીં, દ્રવ્ય દ્રવ્ય કી અપેક્ષા સે નહીં કહેને વાલા બૌદ્ધિક હો ગયા. ખ્યાલ મે? તો હા, યહાં જૈનિઝમ ક્યા કહેતા હૈ કે દ્રવ્યાર્થિક નહીં કી અપેક્ષા સે જબ હમ દ્રવ્ય કો દેખ રહે હૈ તો યહ પર્યાયાર્થિક નહીં કો હમને ગૌણ કિયા, અભાવ નથી એસા સમજાય. ખ્યાલ મે? તો વ્યવહાર નહીં નો વિષય હોવાથી, અબ વો વ્યવહાર નહીં કા વિષય એને ભેદ કરકે કહા ના, તો ભેદ હૈ તો વહાં વિકલ્પ હૈ, વિકલ્પ હૈ ઇસલિયે ઉસકો મલિન કહા, ક્યોંકિ ઉસમે અનેકતા રૂપ આ ગઈ. પ્રવચન સારમાં 46માં અશુદ્ધ નયમાં એમ, 46માં યાને 46 ગાથામાં અશુદ્ધ નયમાં એમ કહ્યું કે વસ્તુને પરિ
46
વસ્તુ ને પર્યાય થી જાણે એ અશુદ્ધ નય છે, જેમ માટી ને વાસન ની પર્યાય થી જોવી એ અશુદ્ધ નય છે. એને માટી કા કોઈ બર્તન હોગા તો બર્તન એસા કહેના, ઉસકો વાસનની પર્યાયથી જોવી એ અશુદ્ધ નહીં છે, અને માટીને માટી રૂપે જોવી તે શુદ્ધ નહીં છે. તેમ ભગવાન આત્માને સમ્યક દર્શન ધ્યાન ચારિત્રની નિર્મળ પર્યાયથી જેવો એ અશુદ્ધ છે, જોવો એ અશુદ્ધ છે, એને અહીં મલિન વ્યવહાર અને અનેકાકાર કહેલ છે. કારણ કે દર્શન ધ્યાન અને ચારિત્ર ત્રણેનો સ્વભાવ જુદો જુદો છે અને ભગવાન આત્માનો સ્વભાવ એકરૂપ છે. આહા, યહાં ઓર એક નઈ બાત બતાઈ, એ તીનો જો હૈ ને દર્શન ધ્યાન ચારિત્ર, એ તીનો કે સ્વભાવ જુદે જુદે હૈ ઓર આત્મા કા સ્વભાવ એકરૂપ હૈ. આ તો વિતરાગ માર્ગ છે બાપુ, જેને એટલે જિનેન્દ્ર ભગવાનના વાણીને ઇન્દ્રો અને ગણધરો સાંભળે, અને જે વાણી અંતરમાં આત્માને બતાવે તે કેવી હોય. યાને હરેક કો અપને અપને આત્મા કા જો ઇન્ટ્રોડક્શન કરા કે દેતે, ઉસકી પહેચાન કરા કે દેતે હૈ, વો વાણી કૈસી હોગી, અદ્ભુત અસાધારણ હોય. ભાઈ, આઈ ભગવાનની એ વાણીની આ વાત છે કે વસ્તુ એક ન્યાયક 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 માત્ર એક સ્વભાવી છે, તેને એક સ્વભાવીની દ્રષ્ટિથી જુઓ તો એ નિશ્ચય છે, એક સ્વભાવી છે, નિર્મળ છે, અભેદ છે. એ આપણે સ્વભાવ કી વાત કરે, એ વસ્તુનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે અને તેને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની પરિણતિથી જુઓ તો એ અનેકાકાર છે, તેથી એ મલિન છે, ભેદ છે, એટલે વ્યવહાર છે. મેં બીજ બીજ મેં મેરે શબ્દ ડાલતો કદા કે અમુક સમજને મેં આસાની હોય. હવે કહે છે, તેથી એક નહીં ત્રણ રૂપ પરિણામ તો કેવો એ વ્યવહાર છે. અભી વ્યવહાર કિસકો કહા? એ કહી અખંડ દ્રવ્ય કો જુદા જુદા રૂપ સે કહેના, ભેદ રૂપ સે કહેના, એ વ્યવહાર છે. એ વ્યવહાર થયો, ઓ સત્યાર્થ પણ થયો. કેમ કે 11મી ગાથામાં ત્રિકાળી જ્ઞાયકને સત્યાર્થ કહ્યો. 11મી ગાથા તો જૈન દર્શનનો પ્રાણ છે. વ્યવહારો ભૂયથો એટલે પર્યાય માત્ર અસત્યાર્થ છે. વળી કેટલાક એમ કહે છે કે અભૂતાર્થને અસત્યાર્થ ન કહો. એને અભૂતાર્થ યાને જો હે નહીં, ભૂતાર્થ યાને હે બના, ઓર જો હૈ નહીં ઉસકો અસત્યાર્થ ક્યું કહેતે આપ? જયસેન આચાર્ય પણ અભૂતનો અર્થ અસત્યાર્થ કર્યો છે. અરે માણસ એ ક્યાં લખાય? માણસ હોણો છે હા, ઠીક હે, વૈસા આપ સમજ લો. અરે માણસ પોતાની દ્રષ્ટિ પોષવા માટે સારા એ શાસ્ત્રના અર્થ બદલી નાખે છે. ક્યાં કહેના ચાહતે હૈ? સમજ મેં આયા? હા નહીં આયા? કહેતે હૈ અપની દ્રષ્ટિ યાને અપની મતિ કલ્પના ખોટી ન ઠરે, इसलिए आ शास्त्र का ही अर्थ पूरा बदल देते हैं. तो मानस का अर्थ क्या लेना? मूड अज्ञानी, खाली अज्ञानी शू करे छे? पोतानी दृष्टि पोषवा यानी स्वयं का मत बिल्कुल सही है ये बताने के लिए सारा शास्त्र ना अर्थ बदली नाखे छे. परंतु वस्तु तो જેવી છે તેવી જ રહેશે. દેખો હમે માલુમ હૈ ના કે આદિનાથ ભગવાન કે સમશરણ મે મારી ચી થા તો ઇસકો કહા કે 24મા તીર્થંકર હોને વાલા. ક્યા બાત કરતો? મે 24મા નહીં તો ઉસને 363 પાખંડી મત નિકાલે. ખ્યાલ મે? થોડા ઇધર સે, થોડા ઇધર સે, થોડા ઇધર સે લેકે કિસકી પુસ્તકે પઢે ઓર ઉસકો એક મત ચાલુ કરે એસા ક્યા? એ પાખંડી મત હૈ. ક્યા સમજા રહે? કે પોતાની દ્રષ્ટિ, માણસ પોતાની દ્રષ્ટિ પોષવા માટે સારાય એટલે બધાય શાસ્ત્રના અર્થ બદલી નાખે છે. પરંતુ વસ્તુ તો જેવી છે તેવી જ રહેશે. ભલે તમે બદલાઈ જાઓ પણ વસ્તુ નહીં બદલાઈ જાય. અભી પહેલે ક્લાસમાં વાત આવી હતી ને, क्या अपनी मन की इच्छा अनुसार जगत का परिणमन नहीं होता है? तू भले मान कि मैं जग को पलटा सकूंगा, मैं पर का परिणमन कर सकूंगा, ऐसे यहां बता रहे कि ये तो बता रहे कि भले तमें बदलाई जाओ, यानी क्या आप हो छोड़ी ने बीजा भवे जाओ, एम भले तमें बदलाई जाओ पर वस्तु नहीं बदलाई जाए, यानी वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं बदलेगी. उसका परिणमन तो चालू है, उसमें कोई चिंता नहीं है. આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે 11મી ગાથામાં ભૂયત્તો દેશિદો દુ શુદ્ધણો ત્રિકાળીએ એકરૂપ જે ચીજ એ સત્યાર્થ છે, તેને ત્રણ રૂપ પરિણમન કરતો કેવો એ વ્યવહાર થયો. એ ત્રિકાળીની અપેક્ષાએ ત્રિકાળ ટકતી ચીજ નથી, તેથી ગૌણ કરીને અસત્યાર્થ કહેવામાં આવ્યો છે. સમયસાર કળશ ટીકાકાર પંડિત રાજમલજી પાંડે 16મી કળશમાં લીધું છે કે આત્મા મેચક, આત્મા ચેતન દ્રવ્ય, મેચક એટલે મલિન છે. કોની અપેક્ષાએ મલિન છે? તો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રયહી ત્રિત્વાત અને સામાન્યપણે અર્થગ્રાહક શક્તિનું નામ દર્શન છે. વિશેષપણે અર્થગ્રાહક શક્તિનું નામ જ્ઞાન છે અને શુદ્ધત્વ શક્તિનું નામ ચારિત્ર છે. આમ શક્તિ ભેદ કરતા એક જીવ ત્રણ પ્રકારે થાય છે, તેથી મલિન કહેવાનો વ્યવહાર છે. तीन अलग अलग बात बताई ना, यहाँ ये सामान्यपने अर्थ ग्राहक शक्ति नु नाम दर्शन, तो ये श्रद्धा गुण की बात चल रही है, मैंने पहले ही बताया था आपको। अभी यहाँ तो तीन बताए ना कि जैसा हमने ये तीन तरफ से आत्मा को जुदा जुदा स्वभाव वाला बताया, ये रत्नत्रय की बात चल रही ना।
यहाँ श्रद्धा,
हाँ
श्रद्धा लिया
है, बिल्कुल श्रद्धा है। हाँ देखो मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट ना, अभी पढ़ा था हमने पहले, एक मिनट में बता दूं आपको, अब भी पढ़ा था
पहले तो लिया था, परंतु पांडे राजमल जी ने विशेष अर्थ अलग किया है।
देखो देखो ये इसका ऊपर का पैराग्राफ है, देखो ये नीचे से एक दो तीन चार पांच लाइन जरा ऊपर जाते हैं, चौथी लाइन, एक दो तीन चार पांच, भाई लिखा है ना, तो साधारण होए के बाद ब्रैकेट पूरा होता है, उसके आगे भाई आई भगवान नी ए वाणी नी आ वाचे के वस्तु एक न्यायक, न्यायक मात्र एक स्वभावी छे, तेने एक स्वभावी नी दृष्टि थी जो तो ए निश्चय छे, एक स्वभावी छे, निर्मल छे, अभेद छे, ए वस्तु नु वास्तविक स्वरूप छे, तेने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नी परिणति थी जुओ तो अनेकाकार छे, मलिन छे, भेद छे, व्यवहार छे। अबे तीन भेद किए ना, तो वही तो भेद है यहाँ पर, मैंने भी दो तीन बार पढ़ा, अभी यहाँ लिखा है ना दर्शन ज्ञान चारित्रत्वात् ऐसा लिखा ना, तो ये दर्शन में जभी जभी सम्यक दर्शन या सम्यक मिथ्या दर्शन, सम्यक्त्व या मिथ्यात्व की बात आती है तब ये तीनों ही लेना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और जब आत्मा के स्वभाव की बात आती है तब उसमें दर्शन ज्ञान कहेंगे तो वह दर्शन गुण की बात है, जो ज्ञाता दृष्टा वाला जो दृष्टा है वह दर्शन स्वभाव, ऐसा मैं समझता हूँ, फिर भी आप देख लेना और मेरी गलती हो तो बताना, लेकिन यहाँ तो ऐसी ही बात ली है। इसके पहले ही देखो राजमल जी कीधु छे कि आत्मा में चक छे, केम के चेतन द्रव्य मलिन छे, कोनी अपेक्षाएं मलिन छे, तो दर्शन दान चारित्री चारित्र है, ये तीन बातें हैं उसके लिए। सामान्यपने अर्थ ग्राहक वगैरह वगैरह वगैरह, आम शक्ति भेद करता एक जीव त्रण प्रकारे थाय छे, तेथी मलिन कहवायो कहवानो व्यवहार छे। पंडित बनारसी दासे पंडित राजमल जी पांडे नी कलश्टिका ऊपर थी समयसार नाटक बनायवु, तेमां 19मो श्लोक हवे आवशे, तेना ऊपर थी जीवद्वार 20मा छंदमा कहूं छे के एक देखिए जानिए रमी रहिए इक और इक ठर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। देखो क्या कहते हैं, एक देखिए जानिए एटले एक वस्तु त्रिकाल भगवान पूर्णानंद ने अवलोक वो ते एक ने जाणवो, रमी रहिए इक ठर अने ते एक स्थान मा रममाण रमणता करवी, यानी सम्यक दर्शन ध्यान चारित्र की बात आई। समल विमल न विचारिये निश्चय थी अभेद ने व्यवहार थी भेद, एवो विकल्प करवो नहीं यही सिद्धि नहीं और, आ मुक्ति ना उपाय नी रीत छे बीजी कोई रीत नथी। हजू तो ज्ञान ना ठिकाना न मळे तेने श्रद्धा ने ज्ञान सम्यक क्याती थाय, याने वस्तु स्वरूप का ज्ञान जिसे नहीं है, यानी अपने आत्मा के बारे में जिसका ज्ञान सही नहीं है, तो उसको कहते श्रद्धा कहाँ से उसकी ठीक ठाक होगी। चलो अब फिर वापस लौटते हैं हम, पृष्ठ क्रमांक 5 के ऊपर जाना चाहिए। अब ये मिल गया सबको पृष्ठ क्रमांक 5, अभी 18 नंबर का जो श्लोक है उसको हम पढ़ेंगे।
परमार्थेन तु व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषैककः सर्वभावांतरध्वंसी स्वभावत्वादमेचकः।
अभी क्या कह रहे देखो, अभी यहाँ तो हमने नई की अपेक्षा से, नई की विवक्षा से देखा था, अभी यहाँ परमार्थ नई की बात करते हैं। ये नीचे से दूसरी लाइन, परमार्थेन तु शुद्ध निश्चय नहीं थी जो आमा आवे तो व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषा प्रकट ज्ञायक ज्योति मात्र थी, एक कहा आत्मा एक स्वरूप छे। अभी हम अपनी भाषा में इसको समझेंगे, यहाँ तो ये समझा रहे हैं कि जब हम आत्मा को शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से देखते हैं तो वो कैसा है, न्यायकता ज्योति मात्र थी, यानी जिसमें जानना 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 रूप जो कोई ज्योत है, ज्ञान जो ज्ञान प्रकाश है, इसलिए उसको कहा ज्ञान न्यायकता ज्योति मात्र थी। तो यानी उसके ज्ञान स्वभाव को ही हम जब देखते हैं तो वह आत्मा एक रूप है। अब कहते हैं एक कहा आत्मा एक स्वरूप छे, सर्व भावान भावता क्या है, भावांतर चाहिए ना, वो तार हो गया, भावांतर चाहिए, वो तार हो गया, भावांतर ध्वंस स्वभाव ध्वंसी चाहिए, ध्वंसी स्वभाव
भावांतर ध्वंसी स्वभावत्वात्,
कारण के शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं थी, सर्व अन्य द्रव्यना स्वभावो तथा अन्यना निमित्तति तथा विभावों ने दूर करवा रूप तेनो स्वभाव छे, तेथी ते अमेचक छे, शुद्ध एकाकार छे। अभी क्या कहते हैं, जब हम उस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से उस स्वभाव को देखते हैं तो वो स्वभाव कैसा है कि वह अन्य द्रव्य जो है उनके स्वभावों को और जो अन्य द्रव्य हैं उनके निमित्त से होने वाले अपने में विभाव परिणाम है, इन सब को दूर करने रूप उसका स्वभाव है। इसलिए वह जो आत्मा जो है वह अमेचक है, शुद्ध एकाकार है। भावार्थ, भेद दृष्टि ने गौण करी, अभेद दृष्टि थी जो आमा आवे तो आत्मा एकाकार ज छे, तेज अमेचक छे। आत्मा ने, अच्छा ये आगे की बात है, अब चलो 19 नंबर पृष्ठ पर, श्लोकार्थ ऊपर नु प्रवचन, आत्मनः मेचको अमेचकत्वयोहो, आ आत्मा मेचक छे, भेद रूप छे, अनेकाकार छे तथा अमेचक छे, अभेद रूप एकाकार छे। अभी मेरे को याद आ गया, ओ ओ ओ 18 पर पढ़ना है, बराबर, मैं आगे गया, हाँ नींद में, हाँ सुनो 18 पेज पर 18वां कलश क्या कहते हैं, आहा हा शू कलश अमृत्ति भरेलो छे, अमृत चंद्राचार्य 1000 वर्ष पहला थया अने तेना 1000 वर्ष पहला एटले आज थी 2000 वर्ष पहला कुंदकुंदा आचार्य थया, मद्रास नी आ बाजू 80 माइल दूर वंदे बास ना गाम छे, 10000 ની વસ્તી વાળું છે, ત્યાંથી 5 માઇલ દૂર પોન્નુર હિલ નામની ટેકરી છે, ત્યાં કુંદકુંદ આચાર્ય રહેતા હતા, તેવો આત્માનુભવી ભાવલિંગી મુનિ હતા, ત્યાંથી પૂર્વ વિદેહમાં સિમંદર ભગવાન પાસે ગયા હતા અને ત્યાંથી આવીને આ શાસ્ત્રો રચ્યા છે, આ સાક્ષાત ભગવાનની વાણી છે ભાઈ, આ વાણી બીજે ક્યાંય નથી, એની એટલે સમયસાર શાસ્ત્રની ટીકા કરનાર અમૃતચંદ્રાચાર્ય 1000 વર્ષ પછી પાક્યા, તે ભાવલિંગી દિગંબર સંત મુનિ હતા, જાને ચાલતા સિદ્ધ, અંતર આનંદનો ઢગલો, એને અતિન્દ્રિય આનંદ કા ઉને પ્રચુર સંવેદન થા, इसलिए कहते अंतर आनंद नो ढगलो, अंदर अतीन्द्रिय आनंद नो प्रवाह वेतो हतो, तेमने आ टीका बनावी छे। देखो कैसा जोगानुजोग है कि 2000 वर्ष पहले कुंदकुंद आचार्य हुए, 1000 वर्ष के बाद अमृतचंद्र आचार्य हुए, और उसके 1000 वर्ष के बाद क्या हुआ, स्वामी जी। 1000 का गैप है। देखो कैसे, मतलब कहां इतने साल पुराने से अभी ये चलता आ रहा है। ये शास्त्र कहे छे परमार्थेन तू शुद्ध एक अभेद आत्मा जेनो विषय छे एवा शुद्ध निश्चय ने थी जोवामा आवे तो, परमार्थेन कहा ना, परम अर्थ जो वास्तविक अर्थ है, जो वास्तविक स्वरूप है, उस अपेक्षा से जब हम देखते हैं तो ये परमार्थ का विषय क्या है कि शुद्ध एक अभेद आत्मा जेनो विषय छे एवा शुद्ध निश्चय नहीं थी जोवामा आवे तो। अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको एक लाइन याद कराने के लिए बोला था, अभी किसको याद है? अच्छा पहले आपने हाथ उठाया, बोलो। हाँ, अखंड अभेद एक रूप जे त्रिकाणी न्यायक भाव एनी दृष्टि। हाँ, एनु स्वसंवेदन ज्ञान ए सम्यक ज्ञान अने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी वो मैंने क्यों याद किया, आप कहना चाहते, बोलो बोलो। ये बात अभी वो बात मैंने क्यों याद की, यहाँ वही बात चल रही है, अभी यहाँ पर वही बात है। देखो देखो कहते हैं कि शुद्ध एक अभेद आत्मा जेनो विषय छे, तो अभी हमने वही कहा ना, अभेद अखंड एक रूप न्यायक भाव जो है तो एवा शुद्ध निश्चय ने थी जो हम आवे तो। अब वैसे आत्मा को जब हम देख रहे हैं तब क्या कहते हैं, व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषा प्रकट न्यायकता ज्योति मात्र थी आत्मा एक स्वरूप छे। यानी यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा ज्ञान 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 स्वरूप ही है, उसमें जो ज्ञायकता है यानी जानने पणा जो है वो कैसा है, ये इस केवल ज्ञान को केवल ज्ञान स्वरूप ज्योति कहा या ज्ञान ज्योति कहा, उसको आत्म ज्योति भी कहा। क्यों? कि यह जो ज्ञान है वो क्या करता है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। यानी जैसी ज्योति होती है प्रकाश, लो होती है ना वो ज्योति, क्या समझते ना, तो वो स्व को भी प्रकाशती है और पर को भी प्रकाशती है। वैसी ज्ञान ज्योति जो है वो स्व को भी जानती है और पर को भी जानती है। इसलिए बार बार आपको शास्त्र में ज्ञान को ज्योति के साथ कंपैरिजन किया हुआ बताएंगे। ये कंपेयर करने का कारण ही यही है कि ये ज्ञात्मा का स्वभाव ही है, ज्ञान का स्वभाव। देखो आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आत्मा सिर्फ स्व को जाने पर को नहीं जाने, या तो सिर्फ पर को जाने स्व को नहीं जाने, क्योंकि स्वभाव है वह तो त्रिकाल होगा। केवल ज्ञान होने के बाद वो सर्व लोकालोक को जाने, ऐसी बात नहीं। यानी वो स्व को भी जानते और लोकालोक को भी जानते हैं, जानते यानी वो जानने के लिए उद्युक्त भी नहीं है, प्रेरित भी नहीं है। ये ज्ञान का ही ऐसा अद्भुत स्वभाव है कि जो लोकालोक है वो उनके ज्ञान में झलक जाता है। वैसा अभी भी हमें, अभी हमारे अवस्था में भी यह हमारा ज्ञान स्व पर प्रकाशक स्वभाव ही है। अभी हम नहीं मानते हैं, हम नहीं समझते हैं तो क्या करें, लेकिन स्वभाव कभी मिटेगा क्या? जो मिटेगा उसको स्वभाव कैसा कहेंगे? मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप पूरे वाक्य में उत्तर देना हो क्यों ये बात आपको समझ में आई है या नहीं, बोलो सब। मुझसे नहीं, पूरे वाक्य में चाहिए, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, तो आपने मुझे यानी मेरी समझ में अपने को रिफर किया ना, यानी मैं जानता हूं कि मैं नहीं जाना हूं, और मैं हूं ये भी जाना है, लेकिन मैं जानता नहीं हूं ये भी जाना है, तो स्व को भी जाना और पर को भी जाना कि नहीं, ये सहज बात है, लेकिन हम गौर नहीं करते क्योंकि हम पर में इतने मशगूल हो गए हैं, इतने एकाग्र हो गए कि स्व नाम की कोई चीज है ये भूल जाते हैं। देखो देखो, एक आदमी को एक रूम में लेके गए और बोले एक मिनट के अंदर तुम रूम से बाहर आना, लेकिन उस रूम में क्या कितनी वस्तुएं हैं वो आप बराबर देख के आना। तो उसको एक मिनट में दिखाया, लाइट लगाया, फिर बाहर ले गए, फिर दोबारा लाया, तो तुमने देखा बराबर देखा? हाँ बराबर। अभी बताओ ये रूम में कितनी वस्तुएं हैं? तो 10 बताई उसने, ये है ये है ये है, और वो स्वयं को भूल गया कि जानने वाला भी वहां है ना। तो खाली गे को जाने और जानन देखन स्वभावी जो आत्मा है उसको नहीं जाने, यही तो तकलीफ है। हम पर में इतने अटके हुए हैं स्व को भूल जाते हैं। वो तो कथा भी आपको मालूम होगी, 9 जने थे, 10 जने थे, अच्छा 10 जने थे, अपना क्या जाता है, तुम कितना बोलते, 12, अच्छा 12 थे, हमको क्या है। तो 12 जन गए क्या, 10, अच्छा 10, किस में गए, वो नाव में गए, एक तीर से पहल तीर गए, बोले अरे सब लोग आए क्या, नहीं देखो देखो चलो लाइन में खड़े हो जाओ, बोलते कि 1, 2, 3, 4, 5, 9, अरे यार गलती हो गई, हम तो 10 जन आए थे, तू बजट तेरे को गिनने को नहीं आता है, मैं गिनता हूँ, उसने गिने कतार में 1, 2, 3, 4, 9, तो वो गिनने वाला स्वयं को भूल जाता है। वैसी हमारी हालत हो गई है कि जानने वाले को हम नहीं जानते हैं, अन्य को जानते हैं, इसलिए स्व पर प्रकाशक शक्ति है इस बात पे इस जीव का भरोसा ही नहीं। अपनी बात तो वो चल रही थी, तो यहां बता रहे हैं, प्रकट ज्ञायकता ज्योति मात्र थी, आत्मा एक स्वरूप छे, अभी उसका खुलासा दे रहे, ज्ञान 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 ए ज्ञान सूर्य चैतन्य नी जड़ ज्योति छे, आहा भाषा जो आत्मा प्रकट ज्ञायकता ज्योति मात्र छे, आई व्यक्त शब्द छे ने, भगवान आत्मा ने व्यक्त प्रकट कयो छे, 49मी गाथा मा भगवान आत्मा ने अव्यक्त कयो हतो, छे 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 कयो छे, यानी आगे आने वाली है, इसमें भी वह अरस आरोपी वाले अलिंग ग्रहण की गाथा आएगी, और अभी 2 गाथा के बाद प्रवचन सार में भी आएगी, वहां उसके 20 भेद किए हैं, 20 प्रकार से अलिंग ग्रहण कैसा है ये बात समझे, यहाँ पर उससे अलावा और 6 भेद बताए, ये इसमें आएंगे, यानी वो 20 में से रिपीट नहीं है। तो क्या कह रहे, देखो देखो 49मी गाथा में भगवान आत्मा ने अव्यक्त कहो छे, त्यां तो पर्याय ने अव्यक्त कही छे, पर्याय ने व्यक्त कही छे ए अपेक्षाएं, त्रिकाणी ने अव्यक्त कहो, परंतु आई एटले अभी जो अपनी 18 कलश चल रहे वहां त्रिकाणी वस्तु व्यक्त प्रकट छे एम कहे छे, त्यां गाथा 49 में अव्यक्त कहो, आई कहे छे के आत्मा प्रकट व्यक्त छे, वस्तु प्रकट चैतन्य ज्योत छे, प्रकट केवी छे तो न्यायकता ज्योति मात्र एटले चैतन्य न्यायक स्वभाव ज्योति छे, हवे एक कहा एटले एक स्वरूप एक एव एक ज एम अर्थ करियो छे, त्रिकाळी वस्तु एक रूप छे तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नयनो विषय छे, ते शुद्ध द्रव्यार्थिक नयनो विषय छे, पड़ी एज सम्यक दर्शननो विषय छे, विषय करनारी तो पर्याय छे पण तेनो विषय एक रूप छे, ध्येय तो त्रिकाळी वस्तु एक रूप छे। हवे कहे छे सर्वभावांतर ध्वंसी स्वभावत्वात्, क्या कह रहे हैं, कारण के शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं थी, अन्य द्रव्यना स्वभावो तथा अन्यना निमित्तति तथा विभावो ने दूर करवा रूप तेनो स्वभाव छे, कोनो आत्मानो सर्वभावांतर ध्वंसी लिखा ना, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं थी, त्रिकाड़ी जे न्यायक स्वभाव तेना दृष्टि अने ज्ञान करवा थी, अन्य द्रव्यना स्वभावो शरीर मन वाणी अने अन्यना निमित्तति तथा विभावो पुण्य पापना भावों ने दूर करवानो तेनो स्वभाव छे, आ व्यवहार थी कथन छे। निश्चयती तो शुद्ध चैतन्य घन स्वभावना प्रतीति ज्ञान ने एकाग्रता थता विभाव उत्पन्न ज थतो नथी, एटले विभावनो नाश करे छे एम कहेवामां आव्यो छे। एने वास्तविक क्या होता है कि वह जीव अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाता है, तब विभावों की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए उसने विभाव का नाश किया ऐसा कहने में आता है। हम देखते हैं ना कि हम कहते हैं कि हमने जमीकंद यानी आलू आदि जो है ना, आलू प्याज ये खाना छोड़ दिया, हमने उसका त्याग किया। अब उसका त्याग किया का अर्थ क्या है कि हमें जो पहले खाने के परिणाम होते थे वो अभी होते ही नहीं है, हमको सपने में भी नहीं आते कि आज आलू की सब्जी खाएं या आलू की सब्जी बनाएं, तो वह मतलब जो परिणाम उत्पन्न ही नहीं होना, खाने के प्रति जो अभिलाषा थी, जो गृद्धता थी, जो लिप्सा थी, वही हुए नहीं अभी रही। तो कहते हमने उसको छोड़ दिया। अब ये पर पदार्थ को तो जीव छोड़ ही नहीं सकता है, ग्रहण तो कर ही नहीं सकता है, छोड़ ही नहीं सकता है, तो यहां तो कह रहे कि भाई हमने तो छोड़े ना, अरे वो तो उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है, वास्तविक ऐसे परिणाम ही उत्पन्न नहीं होते, यही तो छोड़ना है ख्याल में। तो यहां तो क्या कह रहे हैं कि यह विकल्प जो है कौन से, शुद्ध नहीं थी तो शुद्ध चैतन्य स्वभावना प्रतीति ज्ञान ने एकाग्रता विभाव उत्पन्न थतो नहीं। परसों हमने देखा था ना, क्या नाम है, एसो पंचणमो यारो, तो जब तक हम भगवान का नाम लेते हैं तो पांच पाप हमारे में उत्पन्न ही नहीं होते हैं। तो क्या हम पूरा दिन भगवान का नाम लेवे क्या, बिल्कुल लेना, आपको पाप नहीं करना हो तो अवश्य करो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमने पंच परमेश्वरी का नाम लिया और वहां सारे पाप धुल गए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहां पर भी वही कह रहे, जब तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कर रहे हो तब शुभाशुभ विकल्प मन में उठते ही नहीं है, तो उनका नाश हुआ। अब जो भूतकाल में खड़े हो गए थे उसका क्या, अरे वो तो कब के चले गए, उनका तो नाश हो गया है, और भविष्य में तो आने वाले का तो पता नहीं है कौन से आने वाले, तो वर्तमान में ही नहीं उत्पत्ति हुए ना, यही उसका नाश है ख्याल में। तो यहां पर भी वही बात कह दे कि चैतन्य घन स्वभावना प्रतीति ज्ञान ने एकाग्रता थता विभाव उत्पन्न थतोज नथी, एटले विभावनो नाश करे छे एम कहेवामां आव्युं छे। भले कहे वैसा, लेकिन हम तो ये समझना चाहिए, क्योंकि तुम विभाव कर तो नहीं सकते, विभाव को तो तोड़ तो सकते हो कि नहीं, अरे जो कर ही नहीं सकते वो तोड़ने का सवाल ही किधर है, उसका नाश करना, फिर बार बार लिखते हैं ना कि भाई शुभ परिणाम अशुभ परिणाम करो मत, वो तो ये कहना चाहते कि तू अपने स्वरूप में एकाग्र हो जा तो उत्पन्न ही नहीं होंगे, वही खत्म हो गए। बात तो हमें इस तरह से समझना चाहिए, त्रिकाड़ी न्याय के एक रूप भाव में अन्य द्रव्य नो अभाव छे तथा विभाव नो अभाव करवानी ताकत छे। किसमें ताकत है, त्रिकाली न्याय कैसा एक रूप जो स्वभाव भाव है उसमें अन्य द्रव्य का अभाव है, और क्या कहते हैं, विभाव जो है उनका अभाव करने की लायकात है, ताकत है। भावांतर एटले न्यायक भाव थी अन्य भावो, भावांतर का अर्थ क्या लिया, के न्यायक भाव के अलावा अन्य जो भाव है विभावोनो ध्वंस केता नाश करवानो एनो स्वभाव छे कोनो त्रिकाली स्वभाव नो न्यायक भाव नो विभाव ने उत्पन्न करवानो तो स्वभाव नथी कारण के तेमा एवो कोई गुण नथी के जे विकार उत्पन्न करे जो विकार उत्पन्न करे एवी कोई शक्ति होय तो विकार नो नाश थई सिद्ध बनू थई शके नहीं ये ऐसा क्यों कहा प्रतिपद आप बताएंगे क्या कह रहे हैं के न्यायक भावनो विभाव ने उत्पन्न करवानो तो स्वभाव नथी कारण के तेमा एवो कोई गुण नथी के जे विकार उत्पन्न करे अने जो विकार उत्पन्न करे एवी कोई शक्ति होय तो विकार नो नाश थई सिद्ध बनू थई शके नहीं तो ऐसा क्यों कहा होगा। हाँ बराबर उन्होंने ऐसा बताया कि विकार करना यह मेरा स्वभाव हम मानेंगे तो स्वभाव तो कभी तेरे से दूर होना ही नहीं है हा? तो हमेशा विकार ही करते बैठना पड़ेगा तो इसलिए कैसे ऐसा कोई गुण नहीं है ये गुण जो होता है उसकी पर्याय निरंतर होती ही होती है तो यहां तो कह रहे ना कि चारित्र गुण की विकारी पर्याय विकारी पर ही है पर चारित्र गुण विकारी नहीं है क्योंकि सारे गुण त्रिकाली शुद्ध ही होते हैं और ये प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक गुण का परिणमन तो निरंतर चालू ही रहता है ख्याल में है। इसलिए क्या बताया कि ऐसा कोई गुण ही नहीं है कि जो विकार उत्पन्न करे तो अभी हम तो विकार के मालिक तो है नहीं लेकिन उनको मारने वाले तो है कि नहीं तो बोलते वो भी नहीं तो फिर वो तो कम तो होनी चाहिए कटने तो चाहिए तो उसको रास्ता एक ही है कि अपने स्वरूप में गुप्त हो जाओ बस। 34वीं गाथा में आवे छे कि आत्मा राग नो नाश करनारो छे ए पन यथार्थ नथी कथन मात्र छे अभी आ गई ना बात सीधी लाइन में परमार्थे रागना त्यागनु कर्तापनु आत्मा ने नथी पोते तो ज्ञान स्वभाव छे यानी उसका ना काम क्या है जानना 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 कोई दूसरे पिसरे का नाश करना ऐसा नहीं। 320वीं गाथा में पण आवे छे के न्यायक भाव कर्मोदय निर्जरा बंधने मोक्षने जाने छे पण करतो नथी आ रहा था क्या कह रहे ये सारा कर्णानियोग को हटा दिया क्या कहते हैं ये 320 नंबर की गाथा आगे मैंने आ ली है वो कि जो न्यायक भाव है त्रिकाली स्वभाव है वो कर्मोदय को या कर्म की निर्जरा कर्म का बंध और मोक्ष इनको जानता है पन करता नहीं है तो हमको तो मोक्ष करना है कि नहीं मोक्ष मोक्ष का प्राप्त करना है कि नहीं तू नहीं कर सकता केम अमेचक ते अमेचक छे शुद्ध एकाकार छे त्रिकाली चैतन्य स्वभाव राग उत्पन्न करे के रागनी रक्षा करे एवो तेनो स्वभाव ज नथी तेथी अमेचक छे क्या बात है क्या कहते हैं त्रिकाली चैतन्य स्वभाव राग उत्पन्न करे के रागनी रक्षा करे एवो एनो स्वभाव ज नथी भेद दृष्टि ने गौण करीने अभेद दृष्टि थी जुए तो आत्मा एकाकार एक रूपज छे एज अमेचक छे एज निर्मल छे एज पवित्र भगवान आत्मा एक रूप छे आवी दृष्टि करे तो सम्यक दर्शन थाय ये आत्मानुभूति कैसे होवे इसका यहाँ बात बता रहे कि जैसा मेरा त्रिकाली स्वभाव स्वरूप है वैसा जाने और माने तो कहते आवी दृष्टि करे यानी आवी श्रद्धा करे तो सम्यक दर्शन थाय छे आत्मा ने प्रमाण नहीं थी मेचक अमेचक कहो प्रमाण से और नय से ते चिंता ने मटाड़ी जेम साध्य नी सिद्धि थाय तेम करवू एम हवे कहे छे। अभी जो 19 नंबर का जो कलश है कल देखेंगे अभी हम जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोग। का।